नमस्कार भारत, आज है 16 अप्रैल दिन रविवार। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। उत्तर कोरिया ने किया मिसाइल परीक्षण मगर वो रहा नाकाम, दक्षिण कोरिया का दावा। श्रीनगर में सुरक्षा बलों की गोली से एक नौजवान की मौत के बाद तनाव, अलगाववादियों ने बुलाया बंद। उड़ीसा में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज अंतिम दिन, कल पहले दिन कम प्रभाव वाले इलाकों में कमर कसने का किया गया आह्वान।
सारे वर्किंग कमेटी के लोगों से मंत्रियों सहित आग्रह किया गया है कि वो 15 दिन का समय संगठन के लिए दें।
और न्यूज मेकर्स में मुलाकात किन्नर गौरी सावंत से, जिन्हें एक विज्ञापन ने सुर्खियों में लाया।
लोग जो मुझे पहले अलग नजर से देखते थे, मेरे कम्युनिटी को सम्मान नहीं देते थे, अब सबसे ज्यादा मेरी कम्युनिटी को सम्मान देने लगे हैं।
पर पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, तृप्ति श्रीवास्तव से। दक्षिण कोरिया की सेना का कहना है कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट पर एक मिसाइल परीक्षण करने की कोशिश की, मगर उसे संदेह है कि ये नाकाम रहा। यह खबर ऐसे समय आई है जब इलाके में तनाव बढ़ रहा है और एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने अमरीका को परमाणु हमलों से जवाब देने की चेतावनी दी थी। उत्तर कोरिया पहले ही 5 परमाणु परीक्षण कर चुका है और कई मिसाइलें दाग चुका है। भारत प्रशासित कश्मीर में 22 साल के एक युवक की सुरक्षा बलों की गोली लगने से मौत हो गई। अलगाववादियों ने सज्जाद अहमद की मौत और शनिवार को पुलवामा में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 50 छात्रों के घायल होने के खिलाफ बंद बुलाया है। भारतीय कश्मीर में 9 अप्रैल को उपचुनावों के दौरान सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 8 लोगों की मौत हो गई थी। सीरिया में सरकारी नियंत्रण वाले इलाकों से बसों में बाहर निकाले जा रहे लोगों के काफिले पर एक बड़ा आत्मघाती कार बम हमला हुआ है, जिसमें कम से कम 45 लोग मारे गए हैं। धमाका तब हुआ जब ये काफिला विद्रोहियों के नियंत्रण वाले एक इलाके में रुका हुआ था जो अलप्पो शहर के बाहर है। इन गांवों पर सरकार का नियंत्रण है, मगर इन्हें विद्रोहियों ने घेरा हुआ था, जिससे वहां लोग फंसे हुए थे। सरकार और विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों से लोगों को एक समझौते के तहत बाहर निकाला जा रहा था। एलेप्पो के सांसद फरेज शिहाबी ने कहा कि जो हुआ उसके बावजूद समझौता जारी रहेगा। फरेज शिहाबी ने कहा,
सीरियाई सरकार इस समझौते को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम गिरोह नहीं हैं। हम गिरोह के तरीके से गिरोहों का बदला नहीं लेते। हम समझौते को अंत तक ले जाने के लिए जिम्मेदार रहेंगे। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी आतंकवादी जो बस पर किए हमले के जिम्मेदार हैं, हम उन्हें यहाँ लेकर आएंगे और उनसे छुटकारा पाएंगे। उनके साथ साथ उनके परिवार को भी जाना होगा। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने टैक्स संबंधी मामलों का खुलासा करने के लिए नए सिरे से सार्वजनिक दबाव में आ रहे हैं। दर्जनों शहरों में हजारों लोग उनके टैक्स रिटर्न को जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने इसे जारी करने से मना कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर राष्ट्रपति के पास कुछ छुपाने वाली बात नहीं है तो उन्हें टैक्स रिटर्न का डेटा जारी करना चाहिए। हालांकि कानूनी तौर पर ट्रंप को टैक्स संबंधी मामले जारी करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन दशकों से कई अमरीकी राष्ट्रपति ऐसा करते आए हैं। ट्रंप का कहना है कि वो टैक्स रिटर्न की जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि उनका ऑडिट चल रहा है। वॉशिंगटन में इनके खिलाफ काफी प्रदर्शन भी हुए। शनिवार को तुर्की के नेताओं ने संविधान संशोधन को लेकर आज होने वाले जनमत संग्रह के लिए जनता से अपनी अंतिम अपील की। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान ने अपने समर्थकों से कहा कि तुर्की को और शक्तिशाली बनाया जाएगा। उनके प्रतिद्वंद्वियों ने कहा कि ये सारे संतुलन को बिगाड़ देगा और एक व्यक्ति के शासन की तरफ ले जाएगा। कैंपन विभाजनकारी रहा और ऐसा लगता है कि मुकाबला कड़ा है। आखिरी रैली में आए एर्दोगान के समर्थकों का कहना है कि वो राष्ट्रपति पर भरोसा करते हैं। एर्दोगान के एक समर्थक गुलियन अरदार ने कहा, हाँ, हम यहाँ वोट करेंगे, हमें उन पर भरोसा है। हमारे बच्चों और पोतों और हमारे भविष्य के लिए हम हाँ कहेंगे क्योंकि हम उन्हें प्यार करते हैं। ये थे एर्दोगान के समर्थक गुलियन अरदार के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दुनिया की सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति इटली की एमा मोरेना की मृत्यु हो गई है। वो 117 वर्ष की थी। एमा को आधिकारिक तौर पर 19वीं सदी में जन्मा हुआ अब तक का जीवित अकेला व्यक्ति माना जाता था। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। पिछले दो एक दिन से लगातार ऐसी अटकलें लग रही हैं कि सीरिया और अफगानिस्तान में अमेरिका के हमलों के बाद उत्तर कोरिया भी अपनी ताकत दिखाने के लिए कुछ कर सकता है। अब से थोड़ी देर पहले दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट पर एक मिसाइल परीक्षण की कोशिश की, मगर उसे संदेह है कि ये नाकाम रहा। दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने अपने उत्तरी बंदरगाह सिनपो से एक अज्ञात तरह की मिसाइल के टेस्ट का प्रयास करने की कोशिश की। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह किस तरह की मिसाइल थी। अमरीकी सेना के एक अधिकारी ने इस टेस्ट के नाकाम रहने की पुष्टि की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार अमरीकी नौसेना के एक कमांडर डेव बेनहम ने भी कहा है कि यह मिसाइल दागे जाने के लगभग फौरन बाद ही फट गया। यह खबर ऐसे समय आई है जब इलाके में तनाव बढ़ रहा है और एक दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने अमरीका को परमाणु हमलों से जवाब देने की चेतावनी दी थी। अमरीका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस दक्षिण कोरिया जा रहे हैं, जहां समझा जाता है कि वो उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम से निपटने के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तर कोरिया पहले ही 5 परमाणु परीक्षण कर चुका है और कई मिसाइल दाग चुका है। उत्तर कोरिया ने इसी इलाके में इस महीने के आरंभ में चीन और अमेरिका की शिखर बैठक से ठीक पहले एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। उत्तर कोरिया ने शनिवार को कल अपने संस्थापक राष्ट्रपति किम इल सुंग की 105वीं जयंती पर राजधानी प्योंगयांग में एक विशाल परेड की, जिसमें उसने अपनी सैनिक ताकत का प्रदर्शन किया। पिछले कुछ दिनों से ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया के वर्तमान नेता किम जोंग उन एक नए परमाणु परीक्षण का आदेश दे सकते हैं। तो फिलहाल अभी उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट की खबर आई है। दक्षिण कोरिया से हवाले से ये खबर अभी दिन भर, इसमें काफ़ी सारी नई चीज़ें सामने आती रहेंगी, जिसकी जानकारी देने के लिए और लेने के लिए, पढ़ने के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
भारत प्रशासित कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक युवक की मौत के बाद तनाव की स्थिति है। वहीं श्रीनगर लोकसभा सीट से उपचुनाव जीतने वाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। श्रीनगर से पूरे ब्यौरे के साथ माजिद जहांगीर।
कल शनिवार को जहां श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव सीट का नतीजा सामने आया, वहीं श्रीनगर के बट्टा मालूम इलाके में एक 22 साल के युवक की सुरक्षा बलों की गोली लगने से मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में तनाव है। अलगाववादियों ने सजाद की मौत और पुलवामा में पुलिस कार्रवाई में 50 छात्रों के जख्मी होने के खिलाफ आज बंद बुलाया है। 9 अप्रैल को श्रीनगर की संसदीय सीट के लिए कराया गया उपचुनाव का नतीजा कल यानी शनिवार को आ गया है। इस चुनाव में विपक्ष नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हुक्मरान जमात PDP के उम्मीदवार नज़ीर अहमद खान को 10,776 वोटों से हराया है। नज़ीर अहमद खान को कुल 37,779 वोट मिले हैं, जबकि फारूक अब्दुल्ला को 48,555 वोट मिले हैं। फारूक अब्दुल्ला ने अपनी जीत के बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति से कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है।
और मैं गवर्नर से अपील करता हूँ और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूँ, इस हुकूमत को बर्खास्त करके गवर्नर रूल लगाया जाए जिसमें लोगों को कुछ आसानियां और सहूलियतें मिल सके।
श्रीनगर के संसदीय क्षेत्र में केवल 7.3% लोगों ने मतदान का इस्तेमाल किया था। इस सीट पर 38 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराया गया था। फारूक अब्दुल्ला ने एक ऐसे समय में मतदान जीता है जब कश्मीर के हालात बीते 10 महीनों से सामान्य नहीं है। ऐसे में विश्लेषक मानते हैं कि फारूक अब्दुल्ला की जीत से उनकी सियासत पर कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है और न ही हुक्मरान PDP की सियासत को ये जीत प्रभावित कर सकती है। विश्लेषक कहते हैं कि कश्मीरी लोगों ने जब वोट ही नहीं दिया तो फर्क किस बात का। राजनीतिक विश्लेषक ताहिर मुहिदीन बताते हैं,
मेरी ओपिनियन है, मेरी राय ये है कि लोग यहाँ चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे PDP हो, दूसरी मेनस्ट्रीम पार्टियां हो, उनकी सियासत से लोगों में बहुत ज्यादा बेजारी पैदा हो।
इस दौरान कल रात पुलवामा में 2 व्यक्तियों पर अज्ञात बंदूक बरदारों ने गोली चलाई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक घायल है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
इस बीच भारत प्रशासित कश्मीर में सेना की जीप से बंधे जिस युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा हो रहा है, उनकी पहचान हो गई है। उनका नाम फारूक अहमद डार बताया गया है। इस बीच सेना का कहना है कि इस वीडियो की जांच की जा रही है। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने फारूक अहमद डार से बातचीत की और सबसे पहले पूछा कि वो वीडियो है किस वक्त का।
इतवार पोलिंग हो रहे में वो यहाँ चल रही था, जीत पर चल रहा है।
तो आप मतलब वोट डालने जा रहे थे?
नहीं नहीं, रश्मि चारा में एक मेरे रिश्तेदार उस दिन का, उसके बाद वो आरआरआर ने मेरे को पीटा, बहुत डंडा मारा, गाड़ी से बांध ले, घूम के सब गांव के कम से कम 18 किलोमीटर गोलाई में खिलौना बनाना, इसको खिलौना बनाना है, फुटबॉल के जैसा है।
फिर क्या किया? फिर गाड़ी से बांधा?
हाँ, गाड़ी से बांधा, घूम के सब गांव गांव में, पोली बूथ यहाँ है, सब गांव में घूमना है।
और फिर कहाँ पे छोड़ा आपको जाके?
इसको आरआर कैंप पर।
आरआर कैंप में?
हाँ, शाम 7:30 तक।
और सुबह में कितने बजे पकड़ा था?
11:30 आसपास।
लेकिन कुछ खबरें बता रही हैं कि सरपंच के हवाले किया आपको वहाँ के, ऐसे बात से?
हाँ, ये तो वो उनके जमानत पर दिएगा, ये हवाला तुम्हारा है, गांव वालों का, सब गांव वालों को बताएगा ये पकड़ा था, इसीलिए यहाँ आएगी, सरपंच और भाई बहन आएगी उनके सामने, मगर सरपंच के हवाले में कर दी ये आरआर।
तो क्यों पकड़ा आपको, कुछ बताया?
ये बताया, आप लोग पसर वाले, हम लोग पसर वाले नहीं है।
आपका नाम कैसे पता था उनको?
पता नहीं, वो कार्ड दिखाए ना, पहले कार्ड दिखाई, इनको नहीं मानेगा, कार्ड दिखाए पहले इनको, इनको नहीं मानेंगे।
कौन सा कार्ड दिखाए आप?
आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, बाइक का, इनको नहीं माना ये इस गांव का, ये मारपीट दो बहुत, ये जुल्म है मेरे लिए।
तो आप वोट डालने नहीं गए?
वोट डालने के नहीं, उधर के 20 किलोमीटर में क्या डालने वोट के, मैं ताजियत पर जा रहे हैं,
ताजियत के लिए जा रहे थे। तो क्या आप उसके बाद फिर, अब जब ये वीडियो पूरा आया तो क्या आर्मी वाले लोग आए इंक्वायरी करने
यहाँ घर में?
हाँ,
नहीं कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं आए।
पुलिस के लोग आए, क्या माफी मांगी, कुछ हुआ इस तरह से कोई बात?
नहीं कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं, सिर्फ पैदल मीडिया वाले बस।
और गांव के सरपंच वगैरह ने कुछ कहा?
कहा वो सरपंच है ना, पता है, इसलिए उन्होंने जमानत कर दिया और उनके हवाले कर दिया।
आपको जो पकड़ा तब बोला कि तुम भी पत्थरबाजी करते हो, ऐसा कुछ बोला आपको?
इन लोगों, इन लोग आर्मी को बताया आप पत्थर वाले है, मैं इनको बोला मैं पत्थरबाजी में दूसरे गांव से यहाँ आए।
और पत्थरबाजी की घटनाएं कहाँ, कौन से गांव की हैं जहाँ होती है?
ये है उतली गांव वाला, उतली में पकड़ता है।
आपका गांव दूर है?
हाँ बहुत दूर है, कम से कम 28 किलोमीटर दूर है।
आपके गांव में कभी पत्थर नहीं मारा कभी आर्मी के ऊपर?
नहीं नहीं, कोई नहीं मारा यहाँ पत्थर।
नहीं, आपको लोग जानते थे वहाँ भी, जिन गाँव में आपको घुमाया गया?
हाँ, सब कुछ जानता है।
तो आपने लिखित शिकायत की है क्या?
मैंने कुछ किसी जगह पर नहीं शिकायत की।
फारूक अहमद डार से बात कर रहे थे सलमान रावी।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज अंतिम दिन है और समझा जाता है कि आज वहां एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित हो सकता है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं। कल रविशंकर प्रसाद ने ईवीएम पर सवाल उठाने वाले विरोधी दलों को आड़े हाथों लिया। भुवनेश्वर से संदीप साहू।
भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज के बैठक में पारित होने वाले राजनीतिक प्रस्ताव में किन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, इसके पर्याप्त संकेत कल शाम पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने भाषण में दिए। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि इसमें अन्य मुद्दों के अलावा देश के उन हिस्सों में पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां पार्टी अपनी पकड़ अभी तक नहीं बना पाई है। कल शाम एक पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इन इलाकों में अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने के लिए पार्टी पूरा जोर लगाएगी।
सारे वर्किंग कमेटी के लोगों से, मंत्रियों सहित ये आग्रह किया गया है कि वो 15 दिन का समय संगठन के लिए दें, बूथ पर रहे, कार्यकर्ताओं से मिले।
अपने भाषण में अमित शाह ने उड़ीसा में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में पार्टी की सफलता के लिए पार्टी के प्रदेश कार्यकर्ताओं को बधाई दी और दावा किया कि 2019 में होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। हालांकि सत्तारूढ़ बीजू जनता दल भाजपा के इस दावे को गंभीरता से नहीं ले रही। बीजद अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से इस बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था,
I'm not in the least bit worried.
इससे पहले कल अपराह्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में शानदार रोड शो किया। हवाई अड्डे से राजभवन तक का रास्ता उन्होंने अपने गाड़ी के पायदान पर तय किया और हाथ हिलाकर सड़क के किनारे खड़े हजारों लोगों का अभिवादन ग्रहण किया। राजभवन से कार्यकारिणी की बैठक स्थल पर जाते समय भी मोदी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए गाड़ी से निकलकर सड़क पर आ गए, लोगों से मिले और उनका अभिवादन ग्रहण किया। संदीप साहू, BBC, भुवनेश्वर।
3 तलाक पर देश भर में चल रही बहस के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल लखनऊ में शुरू हुई। बोर्ड के पदाधिकारियों ने तमाम मुद्दों के अलावा तीन तलाक, समान नागरिक संहिता और राम मंदिर विवाद पर भी चर्चा की। बोर्ड की बैठक आज भी जारी रहेगी। पूरे ब्यौरे के साथ लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र।
पिछले कुछ समय से मुस्लिम महिलाओं में 3 तलाक का मुद्दा जिस तरह से गर्म है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में भी ये गर्मी दिखाई दी। 2 दिन तक चलने वाली बैठक का कल पहला दिन था और पूरी चर्चा इसी के इर्द गिर्द रही। 2 सत्रों में देर शाम तक चली इस बैठक के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने BBC को बताया।
एक तो ये है कि कोर्ट में जो पर्सनल लॉ से मुतालिक केसेस चल रहे हैं उस पर बहस थी, उसमें जाहिर सी बात है सबसे इम्पोर्टेंट जो है तनाव का मसला है, जो 3 तलाक का है, जो क्वार्टरिंग के मामला है, औरतों के जो मसाइल है उनको किस तरीके से हल किया जाए उसके लिए एक अलग से बोर्ड में वुमेन विंग बनी है, जिसमें कि पर्सनल लॉ से रिलेटेड मामलात को बोर्ड कम वक्त में आसानी से हल कर सके।
इसके अलावा 3 तलाक जैसे धार्मिक मुद्दों को लेकर कई मुस्लिम संगठनों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस BS चौहान से भी मुलाकात की। बोर्ड ने जस्टिस चौहान से कहा कि उसने करोड़ों लोगों से मुस्लिम पर्सनल लॉ पर राय ली है और वो नहीं चाहते कि धार्मिक मामलों और पर्सनल लॉ से जुड़े मुद्दों यानी निकाह, हलाला और 3 तलाक पर सरकार कोई दखल दे। दरअसल 11 मई से संवैधानिक पीठ में 3 तलाक पर रोजाना सुनवाई होनी है। हाल ही में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि वो 1.5 महीने में 3 तलाक के मुद्दे को सुलझा लेंगे, लेकिन आम मुसलमानों की राय इससे अलग है। लखनऊ में नदवा कॉलेज के जिस परिसर में बोर्ड की बैठक हो रही है, वहां कुछ लोगों से इस बारे में हमने उनकी राय जानने की कोशिश की। एक युवा छात्र इमरान मुसद्दी का कहना था,
3 तलाक आज से तो नहीं, बहुत दिनों से मुस्लिम्स में चला आ रहा है, अकॉर्डिंग टू हदीस एंड कुरान है। पहली बात तो इसको क्या ना, बहुत पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर दिया गया इसमें। अगर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुई तभी देख रहे हैं आप इतना ज़्यादा उछला हुआ है, वरना पहले तो नहीं था ऐसा। और आज से नहीं, ये तो हदीस कुरान बहुत पुरानी हमारी और तब से चला आ रहा है, उसी के बेस पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। और अगर इसको लोग जैसे कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड ये सब चीज़ें उसके अंडर आना पड़ेगा, उसमें मेरे ख्याल से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में कोई चेंजेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सब चीज़ें ऑलरेडी जो हदीस कुरान के बेस पे उसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है।
महिलाओं के मुद्दों के अलावा बोर्ड की बैठक में अयोध्या में मंदिर मामले पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि बोर्ड के ज्यादातर सदस्य इस पर कोर्ट के आदेश पर अमल करने की बात कह रहे हैं। फिरंगी महली का कहना था,
इसमें वही बोर्ड का स्टैंड है कि जो बोर्ड का फैसला आएगा वो हमें काबिल-ए-कबूल है।
जहां तक 3 तलाक का मुद्दा है तो वो काफी पुराना है, लेकिन पिछले कुछ समय से इसे लेकर बहस तेज हो गई है। 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाएं एक के बाद एक खुलकर सामने आ रही हैं। यही नहीं, तमाम महिलाएं और संगठन इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी से इस पर प्रतिबंध लगाने और उसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की अपील कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इन महिलाओं का दबाव मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी दिखता है या नहीं। समीर आत्मज मिश्र, BBC, लखनऊ।
और अब आइए देखते हैं आज के अखबारों में कौन सी बड़ी खबरें छाई हुई हैं। तृप्ति श्रीवास्तव उन पर नजर डाल चुकी हैं। तृप्ति, क्या छपा है अखबारों में?
जी अपूर्व जी, जैसे अभी समीर आत्मज जी की रिपोर्ट चल रही थी, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक चल रही है, तो ज़्यादातर हिंदी अखबारों ने इस खबर को काफ़ी तरजीह दी है। जनसत्ता ने लिखा भी है कि पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में देश में शरीयत कानूनों में की जा रही दखलंदाजी को सहन नहीं किया जाएगा। वहीं पर अमर उजाला ने इस चीज़ को उठाया है कि पर्सनल लॉ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी अब बढ़ेगी और इसको लेकर आम राय वहाँ जो बैठक चल रही है उसमें बनी है। वहीं अगर हम एक और खबर की तरफ बात करें जो कि महिलाओं से ही जुड़ी हुई है, तो जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार है उसने लिखा है कि इंडियन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT ने छात्र छात्राओं का अनुपात सही करने के लिए 2018 से छात्राओं के लिए सीटें बढ़ाने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत 20% सीटें सिर्फ छात्राओं के लिए अतिरिक्त बढ़ाई जाएंगी और ये फैसला शनिवार को एक ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड में लिया गया है। आपको मैं बता दूं कि काफ़ी रेशो कम है, लड़कियां बहुत कम हैं IIT में लड़कों के मुकाबले, और ये कोटा 3 सालों में बढ़ाना होगा। इसके तहत पहले साल में 14% यानी 2018 में 14%, दूसरे साल में 2019 में 17% और तीसरे साल में 2020 में 20% तक सीटें बढ़ाई जाएंगी। हिंदुस्तान टाइम्स की हम बात करें तो उसमें लिखा है कि पाकिस्तान ने शुक्रवार को पाक प्रशासित कश्मीर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और पाकिस्तान पुलिस ने यह दावा किया है कि ये तीनों रॉ के एजेंट हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इन तीनों पर एक पुलिस स्टेशन पर बम धमाके का आरोप भी लगाया गया है और पाकिस्तान पुलिस ने संदिग्धों के नाम भी मोहम्मद खलील, इम्तियाज और राशिद बताए हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि ये तीनों अब्बासपुर के तरोती गाँव के रहने वाले हैं और खास बात यह रही है कि इन तीनों को मास्क पहनाकर पाकिस्तानी मीडिया के सामने पेश भी किया गया था। हम द हिंदू की बात करें तो उसमें उन्होंने कुलभूषण जाधव के मामले में भारतीय अधिकारियों के अगले कदम के बारे में लिखा है कि उनका अगला कदम जाधव परिवार की तरफ से सजा के खिलाफ अपील और दया याचिका के लिए बात करने की होगी। उनका कहना है कि इसके लिए जाधव के परिवार को पाकिस्तानी अधिकारियों से संपर्क कर सजा के खिलाफ अपील करनी होगी क्योंकि पाकिस्तान ने जाधव से भारतीय उच्चायोग के संपर्क को लेकर भारत के 14वें प्रयास को भी शुक्रवार को खारिज कर दिया था। तो ये आज की अहम खबरें यहाँ पर रही हैं। इसके अलावा एक बहुत दिलचस्प दैनिक भास्कर में खबर है कि वहाँ पे 100 रुपये किराए पर एक किला है जो कि और किराएदार की कमाई 8 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ की संपत्ति वाला ये मारवाड़ का पूर्व राजघराना काफ़ी चर्चा में है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 123 करोड़ रुपये की वेल्थ टैक्स की वसूली के लिए घराने के 30 बैंक खाते हाल ही में सीज कर दिए हैं। ये दैनिक भास्कर की खबर है।
बहुत बहुत धन्यवाद अखबारों में छपी कुछ अहम खबरों की झलक झलक देने के लिए तृप्ति श्रीवास्तव। और अब समय है न्यूज मेकर्स का। आज इंदु पांडे मुलाकात करा रही हैं गौरी सावंत से। ट्रांसजेंडर यानी किन्नर गौरी और उनकी गोद ली गई बेटी की कहानी पर बना एक विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। इसके बाद कितनी बदली है गौरी सावंत की जिंदगी, आइए जानते हैं उन्हीं से।
BBC न्यूज मेकर्स में एक बार फिर से मैं हूँ आपके साथ इंदु पांडे। क्या कभी आपने सोचा है कि एक ट्रांसजेंडर औरत भी माँ हो सकती है? अगर वो माँ है तो आखिर वो कैसी माँ है? तो आज हम BBC न्यूज मेकर्स में बात करेंगे इन्हीं की, जिनका नाम है गौरी सावंत।
नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ गौरी सावंत, जी हाँ, गायत्री की माँ।
गायत्री की मॉम को आपने विक्स के एड में जरूर देखा होगा। वो जो कहानी है छोटे से विज्ञापन में, वो गौरी की अपनी ही कहानी है और उन्होंने अपनी सचमुच की जिंदगी में एक बच्चा गोद लिया और उसके बाद उनका सफर कैसा रहा, जानेंगे हम आज यही सारी बातें गौरी सावंत से। गौरी, ये बताइए कि ये जो विज्ञापन आया, इससे पहले आपकी जिंदगी और विज्ञापन आने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है?
बिल्कुल नहीं बदली, जैसी वैसी हूँ।
इनकी जिंदगी तो नहीं बदली लेकिन इनके आसपास के लोगों का नजरिया जरूर बदल गया है। गौरी सावंत ने ऐसा ही एक किस्सा सुनाया हमको।
जब मैं रोड पे रहती, परसों मैं पूना में थी, मैं अदरक लेने के लिए झगड़ा कर रही थी कि 10 रुपए का पाव मत दे, मतलब 10 रुपए का आधा किलो दे अदरक के लिए। और फिर वहाँ पे एक बाजू वाली औरत ने मेरे को देखा, सडनली बोला, आप गौरी सावंत हो ना, मैंने आपको टीवी पे देखा है। फिर भी मैं भाजी वाले से तो झगड़ी रही थी, उसको सेल्फी दे दिया और 10 रुपए का आधा किलो लेके ही आ गई।
हम आपको बता दें कि गौरी ने अपने दम पर अकेले अपनी गोद ली हुई बेटी गायत्री का पालन पोषण किया। गौरी का जन्म मुंबई में दादर के एक मराठा परिवार में हुआ। पहले इनका नाम हुआ करता था गणेश नंदन, लेकिन अब वो बन गई है गौरी सावंत। अब मीडिया की इतनी अटेंशन आपको मिल रही है तो ये कैसा लग रहा है?
जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है जब आप मीडिया से रूबरू होते, तो आपकी जिंदगी बहुत बदल जाती है क्योंकि लोगों की आई वॉच होती है आपके ऊपर और एक भी गलत कदम आप करोगे, यही जो आज उठा है वो कल पैरों तले लेने को कम नहीं करेंगे।
गौरी सावंत से जब हमने पूछा कि आखिर आपने कैसे इस बात पे विचार किया कि एक बच्चा आपको अडॉप्ट करना है,
पहले तो वक्त पे उस वक्त डिसीजन मैंने था कि मुझे लेना है करके, क्योंकि उसको बचाना वो मेरे लिए एम था। फिर बाद में जब ये ने सोचा कि अभी हो ही गया तो अभी हम कहीं छोड़ नहीं सकते, और हमारे कम्युनिटी का एक गाना है कवारे बाप का, महमूद जी के ऊपर फिल्माया गया है सज रही गली मेरी माँ, वो गाने का जो सिचुएशन है वही से मेरे साथ हुआ कि मैं मंदिर में भी नहीं छोड़ सकती थी, ना मैं कचरे में भी फेंक सकती थी।
एक बच्चे को माँ तो मिल गई, लेकिन एक माँ के लिए जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, गौरी आगे बताती हैं।
नहीं, उल्टी जिम्मेदारी और बढ़ गई, क्योंकि मैं रात को बेरात को कभी भी अकेली आ सकती थी जा सकती थी, और जब बच्ची को लेके आ रही तो मुझे सोचना पड़ता था कि ये रोड से अभी मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, किस तरीके से कपड़े पहने वो अंकुश आ गया, किसके साथ बात करना है, किस तरीके से अपना बिहेवियर होना चाहिए, बहुत सारी चीजें बदल गई जो एक किन्नर के लिए इतना आसान नहीं है, जो आम लोगों के ढांचे में ढालना है।
और आम लोगों की तरह ही पेश आई गौरी जब गायत्री को पालने की बात आई, और अब गौरी घर से भागे हुए ट्रांसजेंडर्स के लिए मलाड मुंबई के मालवाड़ी में सखी चार चौगी आश्रय स्थल चलाती हैं।
विक्स की एडवर्टाइज देखने के बाद मेरी जिंदगी कितनी बदली है, लोग जो मुझे पहले अलग नजर से देखते थे, मेरे कम्युनिटी को सम्मान नहीं देते थे, अब सबसे ज्यादा मेरी कम्युनिटी को सम्मान देने लगे हैं, लोग प्यार से बात करते हैं, लोग दूसरे भी मेरे बहनों के लिए बोलते हैं कि आपके समाज अच्छा काम कर रहा है।
अब आप अपनी बेटी के फ्यूचर को लेकर के क्या सोचती हैं?
जो भी कुछ बने अच्छी इंसान बने मैं यही चाहूंगी, और समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, उसकी जान उसे होनी बहुत जरूरी है।
और अब समय हो चला है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का फाइनल आज भारत के के श्रीकांत और बी साई प्रणीत के बीच खेला जाएगा। कल खेले गए पहले सेमीफाइनल में के श्रीकांत ने इंडोनेशिया के एंथनी गिटिंग को 42 मिनट में ही 21-13, 21-14 से हराया। इसके बाद दूसरे सेमीफाइनल में बी साई प्रणीत ने कोरिया के ली डोंग क्यून को 38 मिनट में ही 21-6, 21-8 से मात दी। जबकि महिला एकल वर्ग के फाइनल में आज शीर्ष वरीयता हासिल चीन ताइपे की ताइजू यिंग, चौथी वरीयता हासिल स्पेन की कैरोलिना मारिन का सामना करेंगी। उधर आईपीएल 10 में कल दो मुकाबले खेले गए, जहां कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 17 रन से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद के सामने जीत के लिए 173 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वो निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 155 रन बना सकी। कोलकाता के कप्तान गौतम गंभीर ने अपने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, हालांकि क्रिस वोक्स थोड़ा महंगे साबित हुए, उन्होंने 4 ओवर में 49 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, लेकिन उमेश यादव, ट्रेंट बोल्ट, सुनील नारायण, कुलदीप यादव और यूसुफ पठान ने हैदराबाद के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाए रखा। हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने 26, युवराज सिंह ने भी 26 और शिखर धवन ने 23 रन बनाए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने विकेटकीपर बल्लेबाज रोबिन उथप्पा के 68 और मनीष पांडे के 46 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 172 रन बनाए। कल ही दिल्ली में खेले गए दूसरे मुकाबले में दिल्ली डेयर डेविल्स ने किंग्स 11 पंजाब को 51 रन से हरा दिया। दिल्ली डेयर डेविल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 188 रन बनाए। जवाब में किंग्स 11 पंजाब निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 137 रन ही बना सकी।
और सभा समापन से पहले एक बार फिर मुख्य समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से।
बीबीसी समाचार। दक्षिण कोरिया की सेना का कहना है कि उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट पर एक मिसाइल परीक्षण की कोशिश की, मगर उसे संदेह है कि ये नाकाम रहा। भारत प्रशासित कश्मीर में 22 साल के युवक की सुरक्षा बलों की गोली लगने से मौत हो गई। अलगाववादियों ने सज्जाद अहमद की मौत और शनिवार को पुलवामा में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 50 छात्रों के घायल होने के खिलाफ बंद बुलाया है। सीरिया में सरकारी नियंत्रण वाले इलाकों से बसों में बाहर निकाले जा रहे लोगों के काफिले पर एक बड़ा आत्मघाती कार बम हमला हुआ है, जिसमें कम से कम 45 लोग मारे गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने टैक्स संबंधी मामलों का खुलासा करने के लिए नए सिरे से सार्वजनिक दबाव में आ रहे हैं। दर्जनों शहरों में हजारों लोग उनके टैक्स रिटर्न को जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को तुर्की के नेताओं ने संविधान संशोधन को लेकर आज होने वाले जनमत संग्रह के लिए जनता से अपनी अंतिम अपील की। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने अपने समर्थकों से कहा कि ये संशोधन तुर्की को और शक्तिशाली बनाएगा। दुनिया की सबसे ज्यादा बुजुर्ग महिला इटली की एमा मोरेनो की मौत हो गई, वो 117 वर्ष की थी। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचारों के साथ ही नमस्कार, भारत का आज का अंक समाप्त होता है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया शाकिर आलम ने। फिलहाल आप पूर्व कृष्ण को अनुमति दीजिए। नमस्कार।